का आचार्य मान ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथ राष्ट्रमद भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि गौर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से नौम स्कंध अध्याय 21 श्लोक संख्या 7। अथ अन्यः वक्षमाणस्य विवक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत् तस्मै बृषलाय हरिम अस्मरण। अथान्यो वक्षमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत् तस्मै विसलाय हरिं स्मरान्। अथान्यो वक्षमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत् तस्मै बृषलाय हरिं स्मरन्। अथान्यो भक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत् तस्मै बृषलाय हरिं स्मरन्। माता जी लोग अथ तत्पश्चात अन्य दूसरा अतिथि पक्षमाणस्य खाने ही जा रहे थे विवक्तस्य परिवार के लिए हिंसा अलग करते हुए महीपते राजा विभक्तम परिवार के लिए नियत भोजन व्यभजत हिस्से लगाकर बांट दिया तस्मै उस बृसलाय शूद्र को हरिम भगवान का स्मरण करते हुए तत्पश्चात शेष भोजन को अपने परिवार वालों में बांट देने के बाद रंती देव अपना हिस्सा खाने ही जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि वहां आ गया। इस शूद्र को भगवान से संबंधित देखकर राजा रंती देव ने उसे भी भोजन में से एक अंश दिया। तात्पर्य, चूंकि राजा रंती देव हर एक को भगवान के अंश रूप में देखते थे, अतएव वे कभी ब्राह्मण और शूद्र तथा दरिद्र और धनी में अंतर नहीं मानते। ऐसी समदृष्टि समदर्शिना कहलाती है, पंडिता समदर्शिना, जिसे यह अनुभूति हो चुकी है कि भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और सारे जीव भगवान के अंश हैं। वह ब्राह्मण तथा शूद्र, दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कभी जीवों को समान रूप में, सभी जीवों को समान रूप से देखता है और बिना भेदभाव के उनके साथ समान व्यवहार करता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब काल और स्थान में जो परम आश्रणीय हैं, उन परम पुरुष भगवान ने विभिन्न प्रकार का अवतार लिया, यथा राम, परशुराम, कृष्ण। उनका वर्णन करने के लिए और उनके वंशजों का वर्णन किया गया है इस स्कंद में। ये जो नौवां स्कंद है, इस नौवें स्कंद को कहा गया है ईशानुकथा। ईश और अनु यानी उनके अनुयायी, भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में बताया गया है। उसमें भी ज्यादा भक्तों का के चरित्रों का उद्गार किया गया है, क्योंकि यदि भक्त ही न रहे तो भगवान को कौन जान सकता है। भगवान को जनाने वाले भक्त होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को हम जानते हैं, सूर्य को जानते हैं उनके प्रकाश से, वैसे ही भगवान को जानते हैं भगवान के भक्तों के द्वारा। तो इसमें श्री हरि और उनके अनुवर्तियों का कथा है, उनके अनुयायियों का, उनके भक्तों का कथा है। इस सानु कथा का फल क्या है? हम क्यों सुने भक्तों का कथा या भगवान का कथा? इसका फल क्या है? इसी फल का महात्मा पूरे नवम स्कंद में बताया गया है। ईशानु कथा का दो फल है, एक है दुख निवारण और दूसरा है सुख प्रापण, दुख खत्म और सुख की प्राप्ति। ये दो फल है ये नवम स्कंद का। दुख का निवारण कैसे हुआ है? वर्णन किया गया है तीन प्रकार से दुख का निवारण होता है, सगुण तद अनुवर्तनी, ज्ञान तद अनुवर्तती और भगवत चरित्र तद अनुवर्तनी। ये तीन माध्यम है दुख के निवारण का। सगुण तद अनुवर्तनी के द्वारा, जिसका वर्णन अध्याय 1-9 में किया गया है। ज्ञानम तद अनुवर्तन, ज्ञान का अनुगमन कर करके, जिसका वर्णन अध्याय 10 में किया गया है। और भगवत चरित्र है, उसका वर्णन अध्याय ज्ञान कर्म और भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाता है। वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ज्ञान कर्म और भक्ति के द्वारा भगवान को जानते हैं, जिसका वर्णन, ज्ञान का वर्णन अध्याय 11 में किया गया है, कर्म का वर्णन 12 में और भक्ति का 13 में किया गया है। तो इस प्रकार से अध्याय 13 तक कैसे दुख का निवारण हो सके उसका वर्णन किया गया है, और सुख की प्राप्ति कैसे हो यह अध्याय 14 से लेकर के 24 अध्याय तक। इसमें भी सुख की प्राप्ति के दो अंग है, एक है तद अनुवर्ती द्वारा यानी भक्तों के द्वारा, और एक भगवान के द्वारा। तो अध्याय 14 से लेकर के अध्याय 23 के बीच में तद अनुवर्ती यानी भक्तों के लीला को सुन कर करके कैसे भक्त लोग सुख को प्राप्त किए दुख में भी, उसका वर्णन किया गया है। और अध्याय 24 में यदुवंश का वर्णन किया गया भगवान कृष्ण का, जो भगवान सबको आनंद देने वाले हैं, सुख प्राप्त कराने वाले हैं, उनका वर्णन अध्याय 24 में किया गया है। तो यह जो अध्याय है 21, इसमें सुख की प्राप्ति होती है ऐसे सुंदर भक्तों का अनुवर्तन करने से, वो लोग जो किए हैं जैसे अपना जीवन यापन किए हैं, हम लोग भी वैसा ही जीवन यापन करें तो उससे सुख की प्राप्ति होती है। उसी क्रम में यहाँ पर महाराज रंती देव का कथा प्रारंभ होता है अध्याय 21 में। तो अध्याय 21 में महाराज रंती देव का कथा है और आयन भरत के वंशज का वर्णन है, तो दो राजाओं का कथा है। मुख्य करके तो बहुत लोग हैं, लेकिन रंती देव के विषय में हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे रंती देव भरद्वाज बृहस्पति जी के प्रपौत्र प्रपौत्र हैं और भरद्वाज के पौत्र हैं, भरद्वाज के पुत्र थे सिद्धांत और सिद्धांत के पुत्र हुए रंती देव। महाराज रंती देव सदैव अपने आप में संतुष्ट रहते थे और भगवान पर ही उनकी निष्ठा थी सदैव। महाराज रंती देव में वो समस्त गुण विद्यमान थे जो कि एक भक्तों में होना चाहिए, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वे कृष्ण के परम भक्त थे। महाराज रंती देव के विषय में भागवतम में कई एक जगह उदाहरण दिया गया है। जैसे जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था तो जो ब्राह्मण लोग थे वे आए थे और महाराज परीक्षित के विषय में बतला रहे थे कि वे कैसे होंगे, उनका गुण कैसा होगा। तो उस गुणों का वर्णन करते हुए ब्राह्मण लोग कहते हैं, सर्व सद्गुणा महात्मे एष कृष्ण अनुवर्त रंती देव इवोदारो जजातीर इव धार्मिक। कहते सर्व सद्गुण महात्मा, ये सद्गुणों से यह परिपूर्ण बालक होगा, सब प्रकार के गुण इसमें लक्षित हैं एस इस बालक में। और कृष्ण अनुव्रत, ये कृष्ण का फॉलोअर होगा, कृष्ण का डिवोटी होगा। रंती देवो इव उदारो, ये रंती देव के समान उदार मैग्नेनिमस होगा, उदार चित वाला होगा। और जजातिर इव धार्मिक, और जजाति के समान यह धार्मिक होगा। तो यहां पर महाराज रंती देव के एक गुणों का वर्णन किया गया है, वह है उदारता, मैग्नेनिमस। महाराज रंती देव ऐसे मैग्नेनिमस थे कि वह सबको प्रसन्न देखना चाहते थे। कोई भी यदि गेस्ट उनके घर पर आ जाता था तो महाराज रंती देव स्वयं उसका सेवा करते थे, वो नौकर चाकर को सेवा में नहीं लगाते थे, स्वयं यह कार्य करते थे। पहले जमाने में राजाओं में इस प्रकार के गुण थे, वे लोग ईमानदारी और सच्चाई के बल पर वे लोग राज्य करते थे और सदैव जन कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए वो काम करते थे। कितना भी कठिन काम क्यों न हो वे लोग करते थे, उनका धन संपत्ति जो कुछ भी था वह प्रजा के लिए था, वैसे ही महाराज रंतिदेव का। महाराज रंतिदेव अपने राज्य में सब लोगों को प्रसन्न देखना चाहते थे। वे ऊंच नीच, धनी गरीब, छूत अछूत, इस सब का भेदभाव त्याग करके सबको इम्ब्रेस करते थे, सबको आमंत्रित करते थे। जो भी आता था उसे खिलाते पिलाते थे और गिफ्ट भी देते थे। महाराज रंतिदेव के मन में बिल्कुल एक क्लियर था कि भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है वह हमारा नहीं है, यह केवल मेरे भोग के लिए नहीं है, बल्कि इस पर सबका अधिकार है। मैं तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो भगवान हमारे पास दिए हैं। मैं एक डाकिया हूं, पोस्टमैन हूं। और इस प्रकार से महाराज रंतिदेव सब कुछ बांटा करते थे। इसी को प्रभुपाद जी यहां पर समदर्शिना शब्द से कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। महाराज रंतिदेव एक मां के समान थे, एक पिता के समान थे। जैसे किसी बच्चे को कुछ चाहिए तो मां के पास जाता है, वैसे ही किसी प्रजा को कुछ भी चाहिए था महाराज रंतिदेव के राज्य में तो बिना रोक टोक के प्रजा महाराज रंतिदेव के पास चले जाते थे। महाराज युधिष्ठिर के विषय में भी वैसे ही बताया गया है। गुणों का वर्णन थोड़ा हम करते हैं महाराज रंतिदेव का, वैष्णव के गुणों का, और कैसे महाराज रंतिदेव उसमें फिट होते हैं। अपिपल धर्म राजा पितृवत्तरंजन प्रभु निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया। जैसे महाराज युधिष्ठिर थे ठीक वैसे ही महाराज परीक्षित थे। एक क्वालिफिकेशन बताया गया है राजा का, क्या राजा का क्वालिफिकेशन है कहते हैं अपिपल अपलायत, जो लड़ाई में भागे नहीं। किसी प्रकार का लड़ाई हो, हम देख सकते हैं महाराज रंतिदेव के जीवन में कि उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लड़ाई था। उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन अंतिम दम तक वे लड़ाई लड़े। किसका लड़ाई था, किसका लड़ाई लड़ रहे थे महाराज रंतिदेव? प्रॉपर्टी का, गरीबी का लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन वे कभी मुकरे नहीं। जैसे लड़ाई में कोई व्यक्ति अपना जान गंवा डालता है लेकिन दूसरे का रक्षा करता है, महाराज रंतिदेव अपना सर्वस्व न्यौछावर कर करके और यह कार्य किए हैं। तो अपलायत अपिपल धर्मराजा पितृवत रंजना प्रभु, पितृवत रंजना प्रजा, और प्रजा को प्रसन्न करने के लिए एक बाप के समान थे। कोई बच्चा बाप के पास जाता हो, मां के पास जाता हो, वैसे ही महाराज रंतिदेव के पास कोई भी जा सकता था। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, उन्हें अपने लिए किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। सर्व कामेभ्यो, किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वो तो लगे हुए थे कृष्ण पादानुसेवया, भगवान कृष्ण के सेवा में लगे हुए थे। तो महाराज रंतिदेव भगवान की सेवा में लगे हुए थे, इसीलिए उनमें सब गुण विद्यमान थे जो कि भगवान का गुण है। भगवान के सब अंश हैं, सब प्राणी भगवान के अंश। भगवान कहते हैं माम अंश जीवलोक जीव भूत सनातन मनो संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति यान्ति करसति। लोग दुख भोग रहे हैं अपने को भगवान से विमुख होकर के। जो भक्त होते हैं वे लोगों को भगवान के सम्मुख लाने का प्रयास करते हैं, यह जानते हुए कि सब भगवान के ही अंश हैं। तो महाराज रंती देव सब लोगों को प्रसन्न करना चाहते थे ताकि लोग भजन कर सकें। जैसे बाप माँ होते हैं वे बच्चों को सब सुख सुविधा का व्यवस्था करते हैं ताकि बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई कर सके, अच्छा सुयोग्य बालक बने। ये सब सुविधाएं उसलिए दी जाती है, भगवान भी सब सुविधा इसलिए दिए हैं। जय श्री गौनिताय की जय। वैसे ही भगवान के भक्तगण भी अपने कष्ट सह लेते हैं लेकिन दूसरों को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर के विषय में बताया गया है, वैष्णवेर गुणग्राही ना देखिया दोष काय मनो वाक्य करे वैष्णव संतोष। हरिदास ठाकुर कैसे थे, वैष्णवेर गुणग्राही ना देखिया दोष, वो गुणग्राही थे, कभी किसी में दोष नहीं देखते थे। और काय मनो वाक्य मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा वह काम करते थे जिसे वैष्णव संतोष, जिसे वैष्णव लोग प्रसन्न हो सके। तो महाराज रंती देव का जीवन भी इसी में लगा हुआ था कि प्रजा प्रसन्न हो सके, जितने लोग हैं सब प्रसन्न हो सके। ये है महाराज रंती देव का गुण। भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को भगवत भक्ति का वर्णन करते हुए वैष्णव के 26 गुणों का वर्णन किए हैं। देखते हैं कि महाराज रंती देव में कितने गुण हैं। सब है लेकिन इस कथा से कैसे मिलता है। कृपालु अकृत दोह सत्य सार सम निदोष वदान्य मृदु सुचि अकिंचना। ये सब गुण है कृपालु। जो वैष्णव लोग होते हैं वे कृपालु होते हैं, दयावान होते हैं, बिना किसी चीज के एक्सपेक्टेशन के वे प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। नामे रहती जीवे दया, दया अपने कष्ट सहते हैं लेकिन प्राणियों को प्रसन्न रखना चाहते हैं। तो वैष्णव का गुण कृपालुता, कृपालु। अकृत द्रोह, अकृत द्रोह कहते हैं पंगा ले लेना है? कहते हैं ना पंगा ले लेते हैं लोग, तो अकृत द्रोह मतलब जो पंगा नहीं लेते हैं। तकलीफ होता है तब ये अवॉइड करते, कोई बात नहीं हमारा कर्म होगा। हम लोग कैसे हैं, कृतद्रोही हैं, तुरंत पंगा ले लेते हैं। हमको ऐसे बोल दिया है? क्या समझता है अपने को, पंगा ले लेते हैं। लेकिन वैष्णव लोग अकृत द्रोह, लोग पंगा नहीं लेते हैं किसी से, क्योंकि भजन में तकलीफ हो जाएगा ना। जब पंगा ले लेंगे तो भजन होगा, मन डिस्टर्ब रहेगा, फिर भगवान का नाम थोड़े होगा। वो हरे कृष्ण बोलेंगे उधर मन दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए वैष्णव को चाहिए अकृत द्रोह, पंगा मत लो। ये कर्म है, कर्म फल से आ गया। उदाहरण दिया गया है कि कभी कभी हम खाते हैं तो जीवा दो दांत के बीच में आ जाती है, कट जाता है कभी कभी ना। हम पंगा लेते हैं दांत से कि बदमाश कहीं का जीवा काट दिया, हो गया। ठीक वैसे ही वैष्णव को पंगा नहीं लेना चाहिए। अकृत द्रोह सत्य सार, उसे जीवन का सार है ट्रुथफुलनेस, हमेशा सत्य संधित रहना चाहिए वैष्णवों को। समा समा सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, भगवान भी कहते हैं समा, वो सबके प्रति समान है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में आज के श्लोक के बताए हैं कि महाराज रंती देव सम थे, वो भेदभाव नहीं देखे कि कौन चंडाल है और कौन ब्राह्मण है। समा निदोष, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। का दो अर्थ होता है, या निकृष्ट दोष इति निर्दोष, यानी जो दोष से परे हैं जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, या दूसरे में दोष नहीं देखते हैं, ये निर्दोष। वदान्य मैग्नेनिमस, ये बात आया हुआ है कि महाराज रंती देव वदान्य थे, बिना भेदभाव के देने वाले, मैग्नेनिमस। चेतन महाप्रभु के लिए भी कहा नमो महाबदान्य आया, महाबदान्य बदान्य है। मृदु माइल्ड नम्र, शुचि भक्त लोग पवित्र रहते हैं, बाहर से पवित्रता और अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता जो है स्नान इत्यादि कर करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ऊर्ध्वपूर्ण तिलक धारण कर करके, और आंतरिक स्वच्छता जो है वो भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, और अकिंचना भक्त लोग हमेशा अकिंचन रहते हैं, किसी चीज में आसक्त नहीं रहते हैं, गरीब ही रहते हैं। भक्तों को धनी बनने का लालसा नहीं रखना चाहिए, फिर भजन नहीं हो पाएगा। हम लोगों का जो धन है वे हैं कृष्ण। नमो अकिंचन वित्ताय, माता कुंती यही कहती है ना, नमो अकिंचन वित्ताय। अन्य लोगों का धन रुपया पैसा, कुछ लोग कहते हैं हमारा धन बैंक बैलेंस नहीं, हमारा बाल बच्चे हमारे धन हैं, कोई कहते हैं हमारे पशु पक्षी हैं वो हमारे धन हैं, लेकिन भक्तों के जो धन हैं वे हैं कृष्ण। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। तो अकिंचनों के वित्त हैं भगवान कृष्ण, अकिंचनों के धन है। सर्वोपकारक, ये भी एक गुण है भक्तों का, सर्वोपकारक, सबका उपकार सोचते हैं वे लोग, सर्वोपकारक। शांत, और वे हमेशा शांत रहते हैं, कभी कभी डिस्टर्बेंस भी आ जाता है तो वे लोग शांत रहते हैं। अभी हम लोकनाथ महाराज के व्यास पूजा में थे तो एक भक्त कह रहे थे कि महाराज कैसे शांत रहते हैं, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है तो माला उठा करके जप करना शुरू करते हैं, शांति से बस शांत, क्योंकि जब शांत रहेंगे हम लोग तब हम कुछ सोच सकते हैं। जब मन डिस्टर्ब हो जाएगा तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा, दो ही काम करेगा, या तो माइंड और नहीं तो ब्रेन। ऐसे परिस्थितियों में जब कुछ दुर्घटना हो जाए, तकलीफ आ जाए, यदि माइंड काम करेगा तो डिस्ट्रक्शन होगा, और ब्रेन काम करेगा तो निकल सकते हैं। जैसे कोई तैर रहा है, आजकल बहुत बाढ़ वगैरह आ रहा है ना पानी वानी में, जिसका माइंड काम करने लगता है वो डर जाता है, बैलेंस खो देता है, और जिसका ब्रेन काम करता है वो पार हो जाता है। तो ब्रेन काम करना चाहिए, तो शांत रहना चाहिए सब परिस्थितियों में। परिस्थितियां आएंगी जरूर, लेकिन शांत रहेंगे तो परिस्थितियां चली जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई वस्तु आपका पानी में गिर गया तो पानी पहले हिलोरा आता है,
लेकिन कुछ समय पानी शांत हो जाता है तो दिखाई, तो उस समय का वेटिंग करना चाहिए। तो भक्तों को शांत रहना चाहिए, यानी मन डिस्टर्ब न करेंगे तो बुद्धि काम करेगा। और कृष्णैक, कृष्ण एक शरणम, ये भी वैष्णव का गुण है कि हमारे एकमात्र शरण जो हैं वे कृष्ण हैं। शरण शरण्यम, भगवान शरणागतों की शरण है। कृष्णैक शरणम अकाम, भक्तों में कोई वस्तु की कामना नहीं है, शांत रहने का यही तरीका है। अकाम सर्व कामे भो, सभी कामनाओं में अकाम रहिए, हाय हाय न लगा रहे, जो है उसे संतुष्ट है। अनिह, ज्यादा वस्तुओं को एकत्र करने की भावना नहीं रखनी चाहिए, एकुमिलेशन की भावना भी नहीं। दो धोती कुर्ता से काम चल जाए ठीक है, जितना कम रहे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा परेशानी होगी। अनिह स्थिर, भक्त लोग डिटर्मिंड होते हैं अपने भक्ति में। विजित सदगुण, जीता मतलब जीत लेना, और विजिता मतलब विशेष रूप से, विशेष रूप से जीत लेते हैं क्या, सदगुण सद विकारों को, काम क्रोध मोह मत्सर्य लोभ, ये सो सद विकार हैं, सिक्स बैड क्वालिटी जो हैं उन पर वे विजय प्राप्त कर लेते हैं। मीक भूत, कम खाने वाला, मीक भूत कम खाना, वैष्णव वही होते हैं विष्णु जो कम खाते हैं। ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी और पेट भी बड़ा हो जाएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मीक भूत कम खाओ, कम खाओगे हैं तो हरा दास जैसा बना रहोगे। पुरुष भूषण है ना, हाँ, कम खाने से ठीक रहोगे, ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कहा गया कि एक बैग होता है ना, बैग साइज बताया गया इतना रखने का, अब इसे ज्यादा रखोगे तो बैग थोड़ा फूल जाएगा, तो उतना ही रखो जितना साइज है, तो उतना ही खाना चाहिए इसे बॉडी और सोल टुगेदर रह सके। ज्यादा नहीं कि फर्स्ट क्लास का फीस्ट है तो हम ही सब खा लें, सब जिलेबी खा लें। आज फीस्ट है क्या, आज नहीं कल हनुमान, कल तो एकादशी है, कल तो फास्टिंग है, परसों। एनीवे मत, कहने का मतलब है कि कम खाना चाहिए। तो वैष्णव का एक गुण है, वह है कि मित भूख, कम खाने वाला, कम खाना और कम सोना, आहार अल्पहारो श्वान निद्रा बको ध्यानम। हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे, विद्यार्थी के लिए बताया गया है, स्टूडेंट के लिए बताया गया है, अल्पहार कम खाओ, श्वान निद्रा भागवतम क्लास में सो मत, यानी भजन करो सो मत, स्वल श्वान निद्रा कुत्ते के समान, कुत्ता सो रहे हैं तो आवाज आएगा तुरंत उठ जाएंगे। तो विद्यार्थियों को वैसे ही होना चाहिए, सब ब्रह्मचारियों को वैष्णवों को वैसे ही होना चाहिए, अल्पहार श्वान निद्रा बको ध्यानम, और बगुला के समान ध्यान रखो। देखा है बगुला एक पैर पर आता है, जे मछली पकड़ लेता है मछली को, है? तो हम लोगों को वैसे ही रखना चाहिए। अमीक भूत प्रमत अप्रमत्त, एक हम लोगों का डिवोटी था, पता नहीं कहाँ है, जी रहा है कि मर गया पता नहीं, 70s में, उनका नाम था अप्रमत्त दास। वहां बैठता था तुलसी जी के बगल में और बैठ करके 25 माला जप करता था, तो थोड़ा एक्सेंट्रिक था, कीर्तनानंद महाराज के शिष्य था। तो हम लोग कहते थे तुम्हारा नाम यार प्रमत्त होना चाहिए, अप्रमत्त कैसे महाराज दे दिए, महाराज भी उल्टा सुलटा, उनका हनुमान जी का नाम दे दिया हनुमान, तो हनुमान जी का जब नाम हनुमान हुआ तो बड़े गुस्सा में आ गए हनुमान जी का, हमारा नाम हनुमान कैसे हो गया है। उस समय हम लोग बीबीटी में थे तो आ गए कि देखिए राधा गोविंद महाराज थे हम लोग थे। उस समय क्वीन कुंती का ट्रांसलेशन चल रहा था हिंदी में, तो हनुमान जी आ गए। बात सही में बोल रहा हूँ हनुमान जी, तो हनुमान हमारा नाम हनुमान दे दिए ऐसे देखो, मतलब अपने को बंदर समझने लगे। ये नहीं समझ कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तो एनीवे, तो अप्रमत्ता का मतलब होता है जो पागल न हो। प्रमत्त मतलब पागल। भागवतम है ना, प्रमत्ता निधनम पश्यम अपि न पश्यति। जो भौतिकवादी लोग हैं कैसे हैं, प्रमत्त निधनम, पागलपन के चलते वे लोग सोचनीय हैं, पश्यम अपि न पश्यति। तो भक्त कैसे होते हैं, अप्रमत्त, जो पागल नहीं होते हैं। अप्रमत्त मानद, जो मान का कामना नहीं रखते हैं ना, मानद जो मान देते हैं, मानद अमानी जो मान का इच्छा नहीं रखते हैं लेकिन दूसरों को मान देते हैं। गंभीर भक्तो, चंचल नहीं होते हैं, सीरियस होते हैं, भक्ति में सीरियस होना चाहिए। करुणा मैत्र कवि दक्ष मुनि, तो ये सब वैष्णवों के गुण हैं। महाराज रंती देव में भी ये सब गुण थे क्योंकि वे भगवान के भक्त थे। कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण के सेवा में लगे हुए थे। और जो कृष्ण के सेवा में लगे हुए हैं उनमें सब प्रकार के गुण होते हैं, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्यास्त भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुण तत्र समासिते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति असति धावतो बही। यस्यास भक्ति भगवती अकिंचना, जिसकी भगवान में निष्किंचना भक्ति हो, एकांतिक भक्ति हो, सर्वे गुण तत्र समासते सुरा, देवताओं के सब गुण अपने आप आ जाते हैं, यानी सात्विक गुण उनमें जितने 26 क्वालिटी बताया गया है ये सब अपने आप रहते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, हराव अभक्तस्य, जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महद गुण, उसमें ऐसे 26 क्वालिटी कहां से मिलेंगे। वो तो केवल मेंटल स्पेकुलेशन पर, मनोरथेन असती धावतो बही, वो तो मन के रथ पर चढ़ करके दौड़ रहा है, मेंटल स्पेकुलेशन, और कहां जा रहा है, धावतो बही, असत वस्तुओं को खोज रहा है, इसे वो मन उसका डिस्टर्ब होता है। तो महाराज रंती देव इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनकी प्रसन्नता थी सब लोगों के प्रसन्नता में। और भगवान भी कितने दयालु हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को प्रसन्न कर करके अपने प्रसन्न होते हैं, भगवान उनके लिए सब चीज का व्यवस्था करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो महाराज रंती देव के राज्य में धन निधान की कमी नहीं थी, जितना दे रहे थे उसे ज्यादा ही आ रहा था। आप लोग वो कथा जानते हैं ना, मृगारी वाला है, कि मृगारी जब भगत बन गया तो कितना आने लगा, उसे समझे कितना कहां से क्या करूंगा। अरे हम लोगों के जीवन में भी है, जब भक्त बन जाते हैं तो भगवान कितना व्यवस्था करते हैं, हम तो भक्त बनने का प्रयास करते हैं, जब भक्त बन जाएंगे तो कहना ही क्या है। तो महाराज रंती देव वैसे भक्त थे, वो दे रहे थे दोनों हाथ से सब लोगों को, और भगवान भी उनके लिए सब कुछ का व्यवस्था किए थे। उनके राज्य में सब लोग सुखहाल थे, सब लोग सुखी थे, किसी प्रकार का आधी व्याधि कोई तकलीफ नहीं था, और डे बाय डे सब कुछ ये हो रहा था। एक समय की बात है, महाभारत से कथा है, एक समय की बात है कि सब देवता लोग, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, चंद्र, जम, सब लोग क्षीर सागर पर गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से पूछे कि भगवान आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि रंति देव। अब ये देवता लोग थे, ज्यों ही सुने तो भगवान के सामने कुछ बोले नहीं, लेकिन रास्ते में उन लोगों को लग गया था, आपस में बात करने लगे कि देखो हम लोग इतने महान हैं, हम लोग देवता हैं, हम देने वाले हैं, और फिर भगवान एक मनुष्य को सबसे बड़ा समझते हैं, सबसे प्रिय एक मनुष्य को समझते हैं, सबसे बड़ा भक्त एक मनुष्य है, चलो हम लोग देखते हैं कैसे वो बड़ा है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी ये दो महाजन हैं, तो ये लोग कहे कि भैया तुम लोगों को जाना है जाओ, हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, वैष्णव अपराध हो जाएगा ना। और सब टेस्ट करने जा रहे थे तो ब्रह्मा और शिव नहीं गए, बाकी सब देवता लोग गए टेस्ट करने के लिए। प्रभुपाद जी पर्सनली इस पिक्चर को बनवाए हैं, आप लोग देखना, रामेश्वर महाराज उन दिनों अभी प्रभु जब भारद्वाज प्रभु इस पिक्चर को बना रहे थे, प्रभुपाद जी महाराज रंती जी का कथा बताए तो रामेश्वर पूछ रहे थे इसी बात को कि सब कुछ वो देते हैं तो कैसे उनका पिक्चर होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताए, आप लोग देखना, ये फोटो देख लेना, इसमें यहाँ पर है ये फोटो है, और साइड में देखना ब्रह्मा और शिव देख रहे हैं ऊपर। प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली बोले कि ब्रह्मा और शिव को अन्य देवताओं के साथ में मत जोड़ना, क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव ये दोनों महाजन हैं, तो इसलिए वे लोग वैष्णव अपराध से बचे। बड़ा कहीं ऐसा कुछ नहीं है जहां के वैष्णव अपराध में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं ब्रह्मा और शिव, जहां की इंद्र आदि कई एक बार उसमें फंसे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स प्रथम व्यक्ति जो आया, अब उस समय कुछ तकलीफ आया, ड्राउट, अकाल पड़ गया, हैं, फेमाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फेमाइन हो गया, दरिद्रता आ गई, कुछ भी नहीं था महाराज रंती जो भी था अपना सब कुछ देने लगे, अकाल पड़ गया, अनावृष्टि, तो सभी प्रयाग को सब कुछ देने लगे, कुछ भी बाकी नहीं रह गया था, उनके पास भी जो कुछ था। अच्छा, वो अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी, परिवार, सब लोग उनके सहयोगी थे। देखिए, यदि कोई भक्त बन सकता है तो उसमें पावर है पूरे परिवार को भक्त बनाने का। ये पहले जमाने का बात था कि कैसे ये पति, पहले स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी, स्त्रियां अपने पति का सेवा करती थी और पति के साथ में पति के लोक को प्राप्त करती थी, भजन भी स्त्रियां नहीं करती थी, पति का सेवा बस। ऐसे कथाएं हैं महाराज अम्बरीश का, अम्बरीश की पत्नी, वैसे ही महाराज रंती देव की पत्नी, बच्चे उनके आदेश का पालन एज इट इज करते थे, स्ट्राइक नहीं कर दिए कि क्या होगा, सब लोग मर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे कहाँ से, क्या होगा, एक छे नहीं बोले। और उतना ही नहीं, पत्नी और बच्चे ही नहीं बल्कि उनके जितने मंत्री लोग थे वो लोग भी वैसे ही थे जैसे थे महाराज रंती जी, जथा राजा तथा प्रजा है, उनके मंत्री वर्ग भी वैसे ही थे। तो ऑफ कोर्स प्रथम बार बहुत दिन के बाद, 48 दिन ऐसे कुछ है, कहीं कहीं 8 दिन आया हुआ है, एनीवे जो भी है 48 दिन तक उपवास किए महाराज अंतिदेव। लेकिन भगवान के भजन से विमुख नहीं हुए। यहां पर निर्जला एकादशी करते हैं तो भजन नहीं हो पाता है कभी कभी, है पेट पर ध्यान जाता है। आप समझ सकते हैं कि महाराज रंती देव कैसे थे, शरीर से परे हो गए थे। और जब आया कुछ प्राप्त हुआ तो वो सब में अब भोजन करने ही वाले थे कि एक ब्राह्मण आ गए, ये इंद्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। इंद्र थे, वरुण थे, वायु देवता थे और जमराज जी थे, ये चार लोग आए थे। तो इंद्र जो थे वह ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, और आज के श्लोक में आया हुआ है वृषलाय। वृष का मतलब होता है बैल, बैल खूब काम करता है, इसलिए शूद्र को यहां पर वृषलाय कहा जाए, खूब कठिन परिश्रम, नौकरी करने वाला हो, नौकर कठिन परिश्रम करने वाला, तो वृषलाय। और ब्राह्मण को खिलाए, जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो महाराज रंतिदेव बड़े प्रसन्न हुए। महाराज रंतिदेव नहीं सोचे कि अरे रे तो जो था वो भी आधा खा गया है, बल्कि प्रसन्न हुए ब्राह्मण को प्रसन्न देख करके। उसके बाद यह शूद्र आया, उसको खिलाए, और जो बचा हुआ था अब पाने वाले थे, तब तक से वायु देवता आ गए वहां पर अपने कुत्तों को लेकर के, वही है ना कथा, कुत्तों को लेकर के आ गए, उनको भी दे दिए, कुछ भी नहीं रह गया था। जब पानी रह गया था, पानी पीने जा रहे थे, तब तक से चंडाल आया और वे थे जमराज जी। जमराज जी वो पानी भी दे दिए, सबको प्रसन्न किए, और इनकी प्रसन्नता की कमी नहीं हुई। वास्तव में भजन, भगवत भजन करने से प्रसन्नता की कमी नहीं होती, प्रसन्न हम ज्यादा होते हैं। एक बार प्रयास करना चाहिए, क्या हानि है प्रयास करने में, बिना खाए पिए 10-15 दिन रह करके भजन करना चाहिए, कोई हानि नहीं है, प्रयास करने में क्या तकलीफ है। अनकल हम लोग डरते हैं, सोचते अरे बिना खाए पिए भजन कैसे हो सकता है। मैं पर्सनल एग्जाम्पल कह रहा हूं, जब बृहद भागवत महाराज थे तो हम लोग तलासरी गए और सोचे कि आज 3 लाख नाम जप करें, यू आर देयर, यू आर पार्ट ऑफ दैट, 3 लाख नाम जप करेंगे। तो पहले तो मेरा मन ठनका कि 64 माला करना मुश्किल, 3 लाख कैसे होगा। लेकिन जब हम लोग करने लगे तो सही में बड़ा आनंद आ रहा था, और भूख प्यास नहीं था, 11 बज गया रात तो अभी कोई तकलीफ नहीं था। कोई था है यहाँ पर, था जो हमारे साथ में था उस समय, और मुकुल माला प्रभु थे, हाँ तो कोई तकलीफ नहीं था। तो कल एकादशी है, कल निर्जला करते हैं, जप करते हैं, दिन भर देखते हैं कैसा लगता है, परसों भी कर लेंगे, नहीं खाएंगे, 2-4 दिन प्रयास करते हैं, देखते हैं कितने हम आसक्त हैं अपने शरीर से। महाराज रंतिदेव तो इतना दिन रह गए, हम कुछ दिन रखते हैं, कुछ बचेगा भी, चावल दाल बच जाएगा, मंदिर को फायदा ही होगा। एनीवे कहने का मतलब है कि हम लोगों को भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और हम लोग आसक्त हैं अपने देह से, इसलिए देह के सुख और दुख से हम सुखी और दुखी होते हैं। लेकिन महाराज रंतिदेव जैसे महान भक्त लोग दूसरे के सुख और दुख से सुखी और दुखी होते हैं। जो लोग भी महाराज रंतिदेव के पास आए उनके दुख से वे दुखी थे, लेकिन जब खिलाए महाराज रंतिदेव, पानी पिलाए, और जब देखे कि उनके चेहरे पर प्रसन्नता है, तो वही उनके प्रसन्नता का कारण बना। और इस प्रकार से भगवान आए ब्रह्मा और शिव के साथ में, बाद में सब देवता आए, तो भगवान प्रमाणित किए कि मैं ठीक कहा था ना, आप लोगों को विश्वास हो गया ना कि रंती देव हमारा सबसे प्रिय है, रंती देव के समान कोई महान भक्त नहीं है। तो भगवान यह बात प्रमाणित किए हैं इस यहाँ से। तो महाराज रंती देव का जो कथा है बड़ा ही प्रेरणादायक कथा है, इससे सीखना चाहिए कि समस्त परिस्थितियों में हम लोगों को कंटेंट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए और नित्य निरंतर भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। दो चीज सीखना चाहिए, समस्त परिस्थिति सुख हो या चाहे दुख हो, हमेशा हम कंटेंट रहें, सुख का भी वैसे ही दुख का भी हम वैसे ही स्वागत करें जैसे सुख का स्वागत करते हैं, और भगवान पर हमेशा डिपेंड रहें। भगवान जो करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं, अच्छा के लिए करते हैं। तो ये सब कुछ गुण हैं महाराज रंती देव के, सीखना चाहिए। महाराज रंती देव बड़े जेनरस थे, मैग्नेनमस थे और अतिथि सत्कार करने में हमेशा तत्पर रहते थे, पर्सनली कर देते अतिथि सत्कार। प्रभुपाद जी में भी ऐसा गुण था कि प्रभुपाद जी बिल्कुल निर्भीक थे, कृष्ण पर डिपेंडेंट थे और निर्भीक थे, कोई भय नहीं था। ये हरे कृष्ण लाइन के लिए लड़ाई में प्रभुपाद जी को कोई भय नहीं था, भक्तों को भय था लेकिन प्रभुपाद जी को भय नहीं था। और गेस्ट सर्विस में आप लोग प्रभुपाद लीलामृत में पढ़े होंगे कि किस प्रकार से मिस्टर मोहता और एमपी महेश्वरी जब लॉस एंजलिस गए थे तो प्रभुपाद जी उनको उनके होटल से बुलवाए थे रात को, और जमुना दासी को बोले कि तुम प्रसाद बनाओ, तो 12 बजे रात को प्रभुपाद जी खिलाए अपने हाथ से उन लोगों को। तो इस सब वैष्णवों के गुण हैं और हम लोगों को सीखना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए रंती देव से, श्री प्रभुपाद जी से, कि कुछ गुण हम लोगों में भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, क्वेश्चन, कमेंट? माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी। माय क्वेश्चन इज, आपने बताया कि डिवोटीज यूजुअली डोंट टेक पंगा विथ एनीवन, बट व्हेन यू आर डीलिंग विथ हार्डकोर मटेरियलिस्ट एज अ बिजनेसमैन और एज अ प्रोफेशनल, यू नो इट माइट बी कंस्ट्रूड योर वीकनेस इफ यू डोंट, इफ यू डोंट, आई वोंट से रिटेलिएट, बट इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड। तो जब हम लोग मटीरियलिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, डिवोटीज के साथ तो ईजी होता है बिकॉज वेवलेंथ मैच होता है, बट मटीरियलिस्ट के साथ अगर हम लोग डील कर रहे हैं, सो हाउ डू वी लीव बाई दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ममेव अंश जीवलो के एंड अनमानी न माने देना कीर्तन या सदाहरी, हाउ डू वी यू नो फॉलो दिस एंड अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग?
देखिए, सिद्धांत तो यह है कि हम लोगों को पंगा नहीं लेना चाहिए, मतलब हमारे तरफ से हम ना कुछ करें, उनके तरफ से आ रहा है तो डिफेंड तो करेंगे, डिफेंड करेंगे, लेकिन हम ना अपने तरफ से उनसे पंगा लें। कहने का मतलब यह है कि वी शुड नॉट इनिशिएट एनी फाइट, इफ इट कम इन यू कैन डिफेंड, देयर नथिंग रॉन्ग। प्रभुपाद बोलते हैं एक हाथ में मारा रखा है तुम्हें इन्हों तलवार रखो, ऐसा बात नहीं है कि हमको डिवोटी डज नॉट बिकम फुल, यू आर नॉट फुल, इट इज एक्सपर्ट। और यस, महाराज रंती देव को हम इमिटेट तो नहीं कर सकते हैं आज के दिन, यदि रंती देव ऐसा क्वालिटी हो जाए तो फिर बिजनेस करने की जरूरत क्या है, तब तो कृष्ण पर निर्भर रहेंगे जैसे माधवेंद्र पुरी, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, फिर पंगा लेने का सवाल कहाँ उठता है। लेकिन यदि संसार में रहना है और ये काम कर रहे हो तो इमिटेट मत करो रंती देव का, इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने तरफ से हम ना करें, वी डोंट इनिशिएट, बट इफ समबडी ट्राइंग टू अटैक यू, यस, इसका मतलब उल्टा नहीं समझना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा कि मैं सबको मार दूंगा तो बैठकर गंजा पियो, मारो। यस,
हरे कृष्ण प्रभु जी, जब रंती देव परीक्षा में पास हो गए देवताओं के, तब उन्होंने क्या किया?
भजन किया। अब क्या करेंगे उनके लिए, जब तकलीफ था तभी भजन किए, बाद में भजन किए, भगवान थोड़े बन गए, भजन ही किए, भगवान के धाम गए। और कुछ आप बताना चाहते बता सकते हो, आप तो कमेंट देने में एक्सपर्ट हो। ओके, इनका प्रश्न
रिसेंटली ऐसा हुआ था कि एक आदमी ने 7 आदमी को डूबते हुए बचाया और आखिर में वो मर गए।
गॉट टू हियर हिम एंड देन टेल मी।
रिसेंटली एक आदमी ने 7 आदमी को डूबने से बचाया मगर आखिर में वो खुद डूब गया। तो 7 आदमी का तो फैमिली को उसका आधार मिल गया और उसका खुद का फैमिली अनाथ हो गया। तो ये कौन सा न्याय है कि वो अच्छा करने को गया और उसका परिवार का और उसका बुरा हो गया?
मैं कथा में बताया हूं क्या? आप वही प्रश्न करो जो कथा में बताई जैसे उन्होंने पूछा। तो जो कथा संबंधित हो वह, अब जो बात कह रहे हो मुझे मुझे मालूम नहीं है, आपने पढ़ा है आपको मालूम है, तो इसके विषय में आप क्लास देना तो बता देना क्या हुआ, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं क्या हुआ। 7 आदमी को बचा दिया तो अच्छा किया, वो तो अच्छा ही काम किया उसने, लेकिन अब बेचारा हुआ मर गया स्वयं, तब उन 7 परिवार से पूछो क्या करना चाहिए उनके लिए। आई डोंट नो, इसका कोई मतलब नहीं है। प्लीज वही क्लास में कथा में पूछिए प्रश्न जो कि क्लास में बात होती हो। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, गुड क्वेश्चन। वेल, इन गुणों को हमेशा स्मरण करते हुए भगवान के भजन में निष्ठा रखते हुए भजन हम करें, और जैसे जैसे भजन करेंगे वैसे वैसे ये शुद्धता आएगी, और जैसे जैसे शुद्धता आएगी वैसे वैसे ये सब गुण अपने आप मैनिफेस्ट होंगे। यस्यास्त भक्ति भगवती अकिंचन, जब भगवान अकिंचन के चरणों में भक्ति निष्ठावान भक्ति हो जाएगी तब कहते हैं सर्वै गुण तत्र समास्ते सुरा, तो सब ये गुण अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन निष्ठा पूर्वक हम भजन करें। आज हमारा जो भजन है काम चलाऊ है, निष्ठा वाला नहीं है। आदो श्रद्धा ततो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, तब निष्ठा आता है। अभी हमारे अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है, जब अनर्थ की निवृत्ति होगी तब निष्ठा होगा। और निष्ठावान हो करके हम भजन करें तब ये गुण अपने आप मैनिफेस्ट होंगे। कुछ इसके लिए हालांकि गोल मालूम होना चाहिए कि ये हमको प्राप्त करना है और इसका माध्यम क्या है, भजन, निष्ठापूर्वक भजन। तो निष्ठापूर्वक भजन करते रहेंगे, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे, नाम में रुचि होगी तो आ जाएगा। यस, तमाल कृष्ण प्रभु के पास माइक तो कोई आदमी।
हरे कृष्ण, लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि बृहस्पति जी के पुत्र भरद्वाज हुए और भरद्वाज के पुत्र इसमें वर्णन है भागवत में मन्नु हुए और मन्नु के 5 पुत्र हुए, उसमें एक नर थे, नर के पुत्र गुरु और संस्कृति थे, और संस्कृति के पुत्र थे राजा रंती देव। आपने एक दूसरा नाम दिया।
नहीं, संस्कृति बताया ना,
संस्कृति बताया।
हाँ,
तो मुझे सुनने में भ्रम हो गया वो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
क्या बताया मैं, संस्कृति बताया? नहीं, सिद्धांत बता दिया क्या? अच्छा, संस्कृति है, आप ठीक कहो, संस्कृति।
हरे कृष्ण जी। जैसे
एक्चुअली बनारस में एक भक्त है, सिद्धांत कृष्णदास, तो उसका सुबह में फोन आया था तो वही नाम मुझे याद आ गया सिद्धांत। तो संस्कृति आप ठीक कह रहे हैं
जी। जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी और शिव जी महाजन हैं, तो वो रंती देवी की परीक्षा लेने नहीं गए, तो लेकिन इसमें यमराज जी का भी वर्णन आया है कि वो भी आए थे, तो इसके बारे में कुछ।
वेल, यमराज जी के दो सेवा है, एक धर्मराज के रूप में भी है और एक यमराज के रूप में भी है। तो जम के रूप में आए थे, धर्मराज के रूप में आए थे। और कोई प्रश्न?
इसमें आगे 15वें श्लोक में बताया गया कि शिव और ब्रह्मा जी ने अपने आप को इन चारों रूपों में प्रस्तुत किया था।
है?
आगे इसी अध्याय में 15वें श्लोक में बताया गया कि शिव और ब्रह्मा ने ही अपने आप को इन चारों रूप में किया था।
अच्छा, महाभारत से कथा थी जो मैं बताया आप लोगों को, इसीलिए यहाँ पर देखा। अब देखना, ब्रह्मा शिव अलग है, ऊपर है, ऊपर विटनेस के रूप में है, वे विटनेस के रूप में है। यहाँ पर किस श्लोक में है?
15वें श्लोक।
लेट मी सी। तो भागवत को ही प्रमाण मानना चाहिए। तस्य त्रिभुवनाधीशः फलदा फलमिच्छताम आत्मानं दर्शया चक्रु माया विष्णु विनिर्मिता। तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं ने, नहीं, शिव जी जैसे देवताओं ने राजा नंदी के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया। यहाँ तो नहीं वर्णन किया गया,
इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा मीनिंग नहीं आता।
नहीं, संस्कृत देखते हैं। तस्य त्रिभुवन आधीशा, त्रिभुवन आधीशा का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता भी इसमें आ जाते हैं। कहीं कहीं त्रिभुवन नाथ भगवान तो हैं ही, लेकिन देवताओं को ही कहा गया है अधिष्ठ, उनके अधिष्ठाता या कंट्रोलर। तो ये देवताओं को भी आता है। त्रिभुवन, त्रिभुवनाधीश फलदा फलम इच्छिताम। लेट मी सी इंग्लिश में क्या है। डेमीगॉड्स लाइक ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा हु कैन सर्टिफाई ऑल मेटेरियली एम्बिशियस मैन बाय गिविंग देम रिवार्ड they desire, then manifested their own identity before King Rantidev, for it was they who had presented themselves as the Brahmana, Shudra, Chandala and so on. तो इसको हम मानेंगे भागवत को, लेकिन जो मैं कथा बताया वो महाभारत से था। तो ऐसा होता है, लेकिन भागवतम हम लोगों का प्रमाण है, भागवत को ही मानेंगे। लेकिन फिर भी ये जो कन्वर्सेशन है भरद्वाज प्रभु, रामेश्वर स्वामी और प्रभुपाद के बीच में, वो फोलियो में है, आप लोग देख लेना। यहाँ प्रभुपाद जी बताए हैं कि इन लोगों को अलग रखने का, इसीलिए इनको अलग रखा गया है पेंटिंग करते हुए। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन?
हरे कृष्ण जी। जैसे बताया हमने, जैसे इंस्पिरेशन लिया अभी इस लेक्चर से कि भजन करना चाहिए, कभी फास्टिंग करना चाहिए, प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ये कम सोना चाहिए, कम प्रसाद लेना चाहिए। तो जब एकादशी आती है या फिर निर्जल, हाँ एकादशी के समय कुछ, जैसे कि अगर किसी भक्त की इच्छा है कि वो निर्जल करके भजन करे, तो जैसे हमारा मूवमेंट सेवा, हमारे मूवमेंट में सेवा की प्रधानता दी जाती है, तो एक हरिनाम संकीर्तन में जाना भी एक सेवा होती है। तो कभी कभी भक्तों का ऐसा भाव होता है कि ठीक है मैं निर्जल करता हूँ तो फिर मैं गौर आरती में थोड़ा कम नाचूंगा, हरिनाम संकीर्तन में थोड़ा कम नाचूंगा या फिर नहीं जाऊंगा।
तो वो ऐसा एकासी मत भूको, भले खाओ और नाचो और गाओ।
हरे कृष्ण।
तमाल जी कुछ बोलेंगे। कुछ भक्त लोग तो समझते हैं कल निर्जना है कैसे आज इतना डालना है डाल लो खूब डाल लो कल निर्जल एकादशी ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
हरे कृष्ण। राजा रंती देव जी तो एक महान भक्त थे और सारे जीवों को वो भगवान का अंश समझते थे और अंश समझ करके उनको प्रसाद देते थे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं उनमें तो सम दृष्टि है लेकिन हम लोगों में तो विषम दृष्टि होती है। कोई प्रसाद देने के लिए भी आता है तो उसको भगा देते हैं, जबकि प्रभुपाद जी कहते थे कि मंदिर तो 6 कोस के अंदर या 4 कोस के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए।
हनुमान जी आपके लिए है।
तो मेरा प्रश्न ये है कि आखिर हम लोगों में कैसे समदृष्टि आएगी जैसे महाराज रंती देव में वो दृष्टि थी।
भजन करने से जब जितना शुद्धता होगा उतना एक गुण आएगा, जितना जिसमें शुद्धता है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो फटे कपड़े पर भी आसक्त रहता है, वो समझता माँ निकालती है कि नया कपड़ा कर, नहीं हमको नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, उसमें उसमें ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है समझता है फटा है, वो अपने से त्याग देता है। या दो भाई बहन होते हैं अपने बाप के लिए माई डैडी इस पर लड़ाई करते हैं, तो ज्ञान नहीं होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर लड़ाई नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे शुद्धता के ऊपर, हम कितने मेच्योर होंगे कितने शुद्ध होंगे। तो जैसे जैसे शुद्धता बढ़ेगी मेच्योरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ये गुण आते जाएंगे, जैसे जैसे हम खाएंगे भूख कम होती ही जाएगी। तो समय लगेगा, इस जीवन भी हो सकता है, कई एक जीवन लग सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। ऑल राइट, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।